Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ye phal kuch samay ke liye, kuch second ke liye, kuch minute ke liye, aapki ahamrati, aapke prayas se samashti pran ke aakar ki ban rahi hai. इतनी मात्र उपासना हो रही है आपसे, इतने का फल नहीं है। ये जो फल निर्देश किया जा रहा है वो उपासना जब पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, तब इसका फल बताया गया है कि ये है कि उसकी संतान का अविच्छेद होगा दृष्ट फल, और अदृष्ट फल अमृतत्व की प्राप्ति होगी, और यह अमृतत्व होगा सापेक्ष अमृतत्व, प्राण का सायुज्य रूप अमृतत्व। ये जो प्राण का स्वरूप ब्राह्मण भाग के द्वारा बताया गया और प्राण की उपासना का फल अमृतत्व की प्राप्ति बताया गया, इसे यह ब्राह्मणात्मक वेद भाग मंत्र से भी प्रमाणित कर रहा है। इसलिए यह कहा जाता है कि तदेश श्लोक तत्का अर्थ है तस्मिन अर्थे। तो तस्मिन अर्थ यानी ब्राह्मण उक्त अर्थे, ब्राह्मण के द्वारा जो अर्थ बताया गया, ये प्रश्नोपनिषद का तृतीय प्रकरण रूप अर्थ माना जाएगा ब्राह्मणोक्त अर्थ, तृतीय प्रकरण का अर्थ। और इस अर्थ के विषय में यह श्लोक यानी मंत्र भी है। यह मंत्र भी बताता है कि प्राण उपासक प्राण के सायुज्य को प्राप्त करता है, यदि प्राण के स्वरूप को जान करके उपासना करता है। और प्राण का स्वरूप क्या है जो ब्राह्मण ने बताया, वैसा ही मंत्र भी बता रहा है। ते मंत्र है उत्पत्ति मायतिम स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति। तो ये इति शब्द है, इति एष श्लोक उसके साथ अन्वित होने वाला कि यह मंत्र है, ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन करने वाला। तो उत्पत्ति यानि उपास्य प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति, जो बताया गया था ब्राह्मण भाग के द्वारा प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए, आत्मन एष प्राण जायते, ये ब्राह्मण भाग ने बताया। और ये मंत्र बता रहा है उत्पत्तिम विज्ञाय, यानी किसकी उत्पत्ति, तो जो प्रकृत अर्थ है उसको लेना यहां पर उत्पत्ति के धर्म के रूप में। तो प्रकृत है प्राण, प्राण की चर्चा चल रही है, प्राण उपासना की चर्चा है, तो प्रकृत माना जाएगा प्राण को। तो प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति, और आयतिम, आयतिम का अर्थ है आयाति, आयाति का अर्थ है आगमन, उत्पन्न हुए प्राण का शरीर में आगमन प्रवेश, जिस निमित्त से होता है उस निमित्त को भी। तो मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, इस ब्राह्मण भाग के द्वारा बताया गया जो परमात्मा से उत्पन्न हुए प्राण का कर्म निमित्त से शरीर में आगमन, और स्थानम का मतलब प्राण का अध्यात्म स्थान, जो आपानादि वृत्तियों का पायु उपस्थादि अलग अलग स्थान बताया ना, वो स्थान, उसे स्थान शब्द से लेना। और विभुत्वम, विभु कहते हैं स्वामी को, विभुत्वम का अर्थ हो जाएगा स्वामित्व। तो ये जो प्राण है उपास्य प्राण, यही इस कार्यक्रम संघात में सबका स्वामी है, सबको अलग अलग स्थान में नियुक्त करके सबका नियमन करता है ना, सबका। इसलिए पहले गुण बताते समय ये बताया था यही ईश्वर है, यानी नियामक है, स्वामी है। तो विभुत्वम शब्द से उसका ये सब ऐश्वर्य लेना, जो पूर्व में द्वितीय प्रकरण में बताए गए गुण, वरिष्ठत्वादी ये सब, और पंचधा यानी अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करना, प्राण अपान व्यान आदि रूप से, अध्यात्म में और अधिदैव में आदित्य अग्नि अंतरिक्षस्थ वायु सामान्य वायु तथा सामान्य तेज, इन पांच विभागों में जो विभक्त किया उसने उपास्य प्राण ने, वह पंचधा उसका अनुग्राह्य अनुग्राहक रूप से विभाग। और अध्यात्मन चैव, अध्यात्म है अपन आदि रूप से विभाग उसका। ये सब प्राणस्य विज्ञाय, प्राणस्य पद का अन्वय प्रत्येक के साथ करना, प्राणस्य उत्पत्तिम विज्ञाय, प्राणस्य आयतिम विज्ञाय, प्राणस्य स्थानम विज्ञाय, ऐसा हरेक के साथ प्राण शब्द को जोड़ देना। ये सब प्राण के विषय में ही बताया था। और विज्ञाय शब्द का अर्थ है अनुष्ठाय, यह विज्ञान है उपासना ध्यान, तो इसलिए विज्ञाय का अर्थ निकलेगा ध्यात्वा। प्राण के इन उत्पत्त्यादियों का, परमात्मा से उत्पत्त्यादियों का ध्यान करके का मतलब, और ये ध्यान भी कैसे होगा, अहंग्रह उपासना होगी, मैं के रूप में ध्यान प्राण का, कि परमात्मा से उत्पन्न हुआ ये शरीर में अलग अलग रूप से अवस्थित जो प्राण है वो मैं हूं। और शरीर शब्द से खाली ये वेष्टि शरीर ही नहीं लेना, समष्टि शरीर, वो समष्टि प्राण मैं हूं, वो उपास्य है ना। वेष्टि प्राण में तो आत्मभाव है ही है, तो जिसमें आत्मभाव नहीं है उसमें आत्मभाव स्थापित करने के लिए साधना की जाती है, इसलिए उपास्य वेष्टि प्राण नहीं समष्टि प्राण है। और इस समष्टि प्राण की विज्ञाय का अर्थ है अहंग्रह उपासना करके क्या होता है, तो कहते हैं अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्व है यहां पर सापेक्ष अमृतत्व, प्राण का सायुज्य। इस प्रकार इस मंत्र ने भी ये बताया जो ब्राह्मण ने बताया था, प्राण उपासना से अमृतत्व की प्राप्ति होती है और प्राण का ऐसा ऐसा स्वरूप है, वह ये मंत्र भी बता रहा है। तो मंत्र के द्वारा प्रदर्शित अर्थ ये माना जाता है, ब्राह्मण के द्वारा प्रदर्शित अर्थ को एकदम दृढ़ कर देता है, सुप्रमाणित हो जाता है ब्राह्मण उक्त अर्थ, मंत्र यदि समर्थक होता है तो। और यहां पर विज्ञाय अमृतम अश्नुते, विज्ञाय अमृतम अश्नुते ऐसा दो बार उच्चारण है, वो इसलिए कि द्वितीय प्रकरण की यहां पर समाप्ति हो रही है, तृतीय प्रकरण समाप्त हो रहा है, तीसरा प्रश्न। तो प्रश्नोपनिषद तो ब्राह्मण भाग का होने से मंत्र भाग का व्याख्यान रूप है, और मंत्र भाग का है मुंडक उपनिषद के, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के मंत्र भाग का, ये मुंडक उपनिषद का व्याख्यान प्रश्नोपनिषद को माना जाता है। और मुंडक उपनिषद में बताई गई है दो विद्याएं, एक अपरा विद्या दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या का वर्णन करने के लिए ये तीन प्रश्नात्मक प्रकरण थे, अपरा विद्या के फल का वर्णन करने के लिए प्रथम प्रश्न और द्वितीय तृतीय जो प्रश्न है उससे अपरा विद्या रूप जो साधन है प्राण उपासनात्मक उसका स्वरूप स्पष्ट हुआ। का मतलब साध्य साधन रूपा अपरा विद्या बता दी गई। अपरा विद्या का फल संसार अंतपाती ही है, समष्टि प्राण का सायुज्य तक प्राप्त करना, ये अपरा विद्या का फल है। यह फल माना जाता है संसार ही। तो सकाम साधक के द्वारा किया गया कर्म तथा उपासना ये दोनों उसे संसार में उत्कर्ष दिलाते दिलाते समष्टि प्राण कहो या हिरण्यगर्भ कहो वहां तक का उत्कर्ष दिलाते हैं। लेकिन वो समष्टि प्राण भी सादी होने से, गीता कहती है जो भी सादी है यानी उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है, इसलिए अपरा विद्या का फल ये प्राणात्म भाव की प्राप्ति तक है। तो प्राणात्म भाव की प्राप्ति भी नित्य नहीं है, सापेक्ष अमृत है ना। वह हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर ये प्राण भी समाप्त हो जाता है, समष्टि प्राण भी ये नहीं रहते। हिरण्यगर्भ का जो भी उपाधिभूत समष्टि शरीर अंतःपाती 17 तत्वात्मक शरीर है वह समाप्त हो जाता है ना। उसके समाप्त होने से ये फल भी अनित्य माना गया। तो जो अपरा विद्या के फल में यह अनित्यत्वादि दोष देखता है और चाहता है कि ऐसा फल मिले जिसे प्राप्त करने के बाद वह कभी भी छूटे न, हमेशा के लिए मिले, शाश्वत फल हो, तो इनसे विरक्त होगा अपरा विद्या से और उसे नित्य फल की प्राप्ति, और नित्य फल है मोक्ष ही, अमृत निरपेक्ष अमृतत्व ही, परमात्म भाव की प्राप्ति ही, ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही। और उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति का साधन मुंडक उपनिषद में बताया गया, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। इस वाक्य के द्वारा कहते हैं परा विद्या वो है जिससे अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अविनाशी परमात्म भाव की प्राप्ति कराने वाली विद्या वह परा विद्या है। और उस परा विद्या की व्याख्या करने के लिए मुंडक उपनिषद में वर्णित परा विद्या की व्याख्या करने के लिए 3 प्रकरण अवशिष्ट हैं, 3 प्रश्नात्मक। तो ये 4वां प्रकरण, 5वां तथा 6वां, इनमें मुंडक उपनिषद में आई हुई परा विद्या का वर्णन होगा विस्तार से। इसके लिए मुंडक उपनिषद में एक आया था जो वाक्य की अथ परा ये या तद अक्षरम अधिगम्यते, कहा कि परा विद्या वो है जिससे उस अविनाशी अक्षर की प्राप्ति होती है। तो अविनाशी अक्षर कौन है? मुंडक उपनिषद में 2 अक्षर बताए गए हैं, एक अव्यक्त को भी अक्षर नाम से कहा गया, अव्यक्त कहो या प्रकृति कहो या अव्याकृत कहो, मूल अज्ञान कहो, माया कहो, उसे भी अक्षर शब्द से मुंडक उपनिषद में कहा गया है और ब्रह्म को भी अक्षर शब्द से कहा गया है। तो 2 वस्तु के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग मुंडक उपनिषद में आता है, माया के लिए भी और ब्रह्म के लिए भी। इसीलिए यहां पर परा विद्या का लक्षण बताने वाला जो वाक्य है ना कि अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसमें अक्षरम का विशेषण है तत्, और तत् शब्द का अर्थ होता है गीता में ब्रह्म के परामर्शक तीन शब्द बताए हैं, ओम तत् और सत। तो तद अक्षरम यानी तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्मरूप, तो तद अक्षरम का अर्थ निकलेगा ब्रह्मरूप अक्षर। ये तत् शब्द व्यावर्तक होगा माया रूप जो अक्षर है उसका, अव्यक्त रूप जो अक्षर है उसका। एक मंत्र में अक्षर शब्द का माया के लिए प्रयोग आया मुंडक में, अक्षरात परतः परम दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्यभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात परतः परः, ऐसा वो मंत्र है। इसमें अक्षरात ये जो पंचम्यंत पद है उसका विशेषण है परतः, परतः अक्षरात, और परह का अर्थ हुआ जो पर अक्षर है उससे भी जो पर है। पर का अर्थ है सूक्ष्म, अभ्यंतर, व्यापक। तो ये जो अक्षर है एक वो माया है, परतः अक्षरात इस पंचम्यंत अक्षरात शब्द से भी पर बताया गया ना। तो जैसे कठोपनिषद में कहा गया अव्यक्तात् पुरुषः परः, ऐसे यहां पर अक्षरात परः, इसमें अक्षरात शब्द का अर्थ है कठोपनिषद में जिसे अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्तात् पुरुषः परः, ऐसे अक्षरात् परः वो कौन दिव्य पुरुषः, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः, यहां से पुरुष पद आता है और अक्षरात् पुरुषः परः ऐसा अन्वय होता है। तो जिस अक्षर से पुरुष को पर बताया जा रहा है, अभ्यंतर बताया जा रहा है, सूक्ष्म बताया जा रहा है, व्यापक बताया जा रहा है, वह अक्षर है अव्यक्त माया अव्याकृत, और उसे भी परतः शब्द पर बता रहा है। वो किसकी अपेक्षा पर है? तो जैसे कठोपनिषद में कहा गया था महत परम अव्यक्तम, अपने कार्य की अपेक्षा कारण पर होता है, यानी सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है, अभ्यंतर होता है। तो माया का जो कार्य है परिणामात्मक यह आकाश आदि जगत भूत तथा भौतिक, इसकी अपेक्षा पर है माया। इसलिए परतः अक्षरात यानी अपने कार्य रूप जगत से भी पर अक्षर जो अव्यक्त है माया है, और उससे भी पर जो दिव्य पुरुष है, वह दिव्य पुरुष है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते में तद अक्षर शब्द का अर्थ, तद अक्षरम में तद इस शब्द का प्रयोग होने से अक्षर शब्द से समझना वो अव्यक्त रूप अक्षर से भी पर जो पुरुष बताया गया वह यहां तद अक्षर है, और उसकी उपलब्धि जो विद्या करा दे वह विद्या परा विद्या है। तो वो तद अक्षर है परमात्मा ही, अव्यक्त से भी पर पुरुष, और उसकी उपलब्धि है वह तो प्रत्येक का स्वरूप है, अभिन्न है, इसलिए नित्य प्राप्त ही है, और नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है उसकी अप्राप्ति जिस आवरण के कारण प्रतीत हो रही है उस आवरण की निवृत्ति, और आवरण है यही अक्षर शब्दित माया। तो अव्यक्त को, माया को पराविद्या यानी अहम ब्रह्मास्मि यह बोध निवृत्त करता है। वह अनादि है अव्यक्त लेकिन शांत है, पराविद्या से निवृत्त होता है। और जैसे ही पराविद्या से यह पर अक्षर शब्दित अविद्या निवृत्त होती है, माया निवृत्त होती है, बाधित होती है, तो फिर वह दिव्य पुरुष शब्दित परमात्मा हमारा स्वरूप ही है, वह स्वयं ही मय के रूप में अभिव्यक्त होता है, स्फुरित होता है। वह स्वयं प्रकाश है न, दिव्य है, इसे यह अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति प्रकाशित नहीं करती। किंतु अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति करती क्या है, ब्रह्म ज्ञान करता क्या है, पराविद्या करती क्या है, ये जो अनादि काल से हमारा ब्रह्म भाव आवृत्त है, किससे, अविद्या से, अव्यक्त से, अव्याकृत से, वही यहां अक्षर है, परतः अक्षर शब्द से कहा गया, उसी ने हमारे ब्रह्म भाव को आवृत्त करके रखा है। और वह आवरण पराविद्या निवृत्त करती है, हटा देती है। और जैसे ही पराविद्या से वो आवरण हट जाएगा तो ब्रह्म फिर आपको प्राप्त करना नहीं पड़ता। यदि अविद्या से प्राप्त होगा तो आगंतुक होगा ना, आगंतुक होने से वो भी अनित्य होगा, नित्य थोड़ा ही माना जाएगा। और चाह रहे हैं ये तो अपराविद्या भी अनित्य अमृतत्व की प्राप्ति करा रही थी, नित्य अमृत है परमात्मा, और वो परमात्मा यदि हमारा स्वरूप नहीं होगा तो पराविद्या से प्राप्त होगा जो हमारा स्वरूप नहीं था वह पराविद्या ने हमें प्राप्त करा दिया, तो संयोग हो गया परमात्मा का हमारे साथ। तो संयोगा विप्रयोगांता, ये वाक्य बताता है संयोग का अंतिम पर्यवसान विप्रयोग यानी विनाश, वियोग में होता है। तो संयोग का अंतिम परिणाम तो वियोग है। यदि परमात्मा हमसे अलग होगा और उसे पराविद्या हमें मिला देगी, परमात्मा का हमसे संयोग करा देगी, तो वह संयोग कभी वियोग में बदल जाएगा, नित्य नहीं माना जाएगा। इसलिए यह समझना कि परमात्मा को हमें प्राप्त नहीं करना है, और पराविद्या हमें परमात्मा की प्राप्ति कराती भी नहीं है। परमात्मा तो स्वयं हम ही हैं, परमात्मा की तो प्राप्ति हमें ही है हमारा स्वरूप होने से, लेकिन वह जिस अविद्या के कारण अप्राप्त सा लग रहा है उस अविद्या को हटाने की आवश्यकता है, और वह अविद्या हटाती है पराविद्या ही। ये पराविद्या का ही सामर्थ्य है आपके ब्रह्म भाव की आवरक अविद्या हटा दे, और कोई हटा नहीं सकता। इसलिए उसे यया तद अक्षरम अधिगम्यते में परमात्मा की प्रापक है ऐसा कहा जाता है गौण रूप से। आवरण को हटाने से आवरण नहीं हटता तो परमात्मा प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त सा ही लगता, और जिसने आवरण हटाया माना जाता है उसने हमें जो अप्राप्त सा महसूस हो रहा था उसकी प्राप्ति करा दी। तो वो जो पराविद्या है परमात्मा के आवरण को हटाने वाली, उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए ये अवशिष्ट तीन प्रश्न है, इस पर चर्चा हम लोग कल से करते हैं। हरिओम।